ओम शांति। 8 जुलाई 2023, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो। क्या करो? आते ही प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करनी है? जब तक सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हो जाता, तब तक हम सुख की नींद नहीं सोए, तब तक हम घोड़े बेचकर नहीं सोए, तब तक हमें रात को भी ये चिंतन रहेगा कि कैसे सेवा करें, कैसे सबको स्वर्ग के लायक बना। खुद भी पवित्र बनना है और सबको पवित्र बनाएंगे, सबको पवित्र बनाएंगे। जब तक सबको पवित्र नहीं बना देते, नई दुनिया की स्थापना नहीं कर देते, तब तक सुख की नींद नहीं सो सकते। प्रश्न, ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रसम, ऐसी मौत संगम पर होती और कहीं भी नहीं होती। ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रसम है, ऐसी मौत होती है कोई? उत्तर, विजयमाला में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे भी आश्चर्यवत सुनंती कथंती भगंती और मरण, भाग जाने के बाद मर गए ना, मर जाते, ऐसी मौत भी संगम युग की जैसे रसम बन गई। संगम युग की क्या है? रसम है, रिवाज है। श्री मत पर ना चलने से माया हरा देती है, बाप का बनकर हाथ छोड़ देते हैं तो गोया मर गए, तकदीर पर लकीर लग गई। जी, दर पे आए हैं कसम लेके, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे जीते जी मरने वाले बच्चों ने ये गीत सुना, जो जीते जी कुर्बान गए हैं, सब तो कुर्बान नहीं गए, जो जीते जी कुर्बान गए हैं, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जीते जी मरते, जीते जी मरते, जितना कुर्बान गए हैं उतना मरे हैं। जब कोई गोद में लेते हैं या एडॉप्ट करते हैं तो एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार का बनते हैं। इस परिवार को छोड़ा, किसी ने गोद लिया, अब उस परिवार का वो बन गया। बच्चे जानते हैं हम आसुरी परिवार से मरकर अभी ईश्वरीय परिवार के बने हैं, ईश्वर ने आकर गोद में लिया है। अज्ञान काल में कोई ईश्वर की गोद नहीं लेते, अज्ञान काल में कोई ईश्वर की गोद नहीं लेते, किसकी गोद लेते हैं? धर्म के गुरु की गोद ले लेते हैं, वे गुरु धारण करेंगे। जैसे बल्भाचारी धर्म को धारण करने वाला श्री कृष्ण के मंदिर में बच्चे को श्री कृष्ण की गोद में देते हैं, परंतु अब वो तो जड़ चित्र है, इसलिए फिर ब्राह्मण या पुजारी गोद में ले लेते हैं। वैष्णव बनाने के लिए कि हम तुम्हें क्या बनाएंगे, वैष्णव बनाएंगे, ऐसे गोद में तो बहुत लेते हैं, बच्चे जानते हैं, बरोबर उनकी गोद लेते हैं जो होकर गए, जो होकर गए। कोई क्राइस्ट की गोद लेता है तो हम क्रिश्चियन बनेंगे, कोई इब्राहिम की गोद लेता है। मतलब अलग अलग धर्म के जो विचार वाले हैं वो वहां गोद लेते हैं, कोई आर्य समाज में जाके समर्पित हो जाता है, गोद ले लेते हैं। कोई इब्राहिम की गोद, कोई कब होकर गए हैं ना वो सब, वे फिर कब आएंगे? 5000 साल बाद फिर उस समय वे उसी प्रकार से आएंगे। ये भी सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, अभी तुम जीते जी मरे हो। तुमको एक बात की याद में रहना है, एक बात की श्रीमत पर चलना है। लौकिक बाप के बच्चे गोद में आते हैं, बाप मर जाता है, बाकी बच्चे रह जाते हैं। तो गोद ले लिया, अब बाप मर गया, बच्चे तो वहीं रह जाते। यहां तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जो तुमको इस मृत्यु लोक से अमर लोक में या दुर्गति से सदगति में ले जाने वाला है, ले जाएगा। मनुष्य मात्र का सदगति दाता एक ही है, ऐसे नहीं कि सदगति सिर्फ तुमको मिलती है। सदगति तो सबको जरूर मिलती है, परंतु ड्रामा अनुसार, किसको सतो प्रदान, किसको सतो, किसको रजो, किसको तमो सदगति मिलती, सदगति सबको मिलती है। हाँ, सबको गति सबको मिलती है, सदगति सबको मिलती है। परमात्मा कहते मैं तुमको सबको साथ ले जाऊंगा, बाकी धर्म पता है क्या करेंगे, वो लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे, वो सबको लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे। हाँ जी, उनको वो खुद नहीं जा सकते, पक्का है। सारी आत्माओं को बाबा लेके जाएगा, परंतु जो जिनके इष्ट देव हैं, जो जिनके हंजे, हाँ उनके साथ ही जाएंगे, बाद का तो कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने भी साथ जाना है, क्योंकि एक ही सेकंड में सबने जाना है, तो सब एक साथ ही जाएंगे। उससे पहले वो अपने इष्ट देव की बात, अपने गुरु की बात को मानेंगे, उसके अनुसार अपने जीवन को जितना सुधारना होगा उतना सुधारेंगे, परंतु साथ तो सब एक साथ जाएंगे, उनके गुरु भी उनके इष्ट देव भी साथ साथ ही। धर्मराजपुरी कब लगेगी फिर? धर्मराज कौन है? हम खुद ही धर्मराज हैं। तो धर्मराज के पास बाद में क्या लगेगा? अब रोज धर्मराज की पुरी में आप अपने फैसले करते रहते हो, चाहे रो तो चाहे हंसो, है नहीं? जो भी हमने किया वही हमें मिल रहा है, अब उसे रो करके स्वीकार करो तो चाहे हंस करके स्वीकार करो। चल रही है धर्मराजपुरी, साथ साथ चल रही है। रोजाना बेटे आकर के, बच्चे आकर के दुख दे जाते हैं, कहां से कोई सुबह चुबो देते हैं, कभी कुछ चुबो देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, है नहीं? कोई पड़ोसी, कोई अड़ोसी, कोई रिश्तेदार, मतलब हर एक अपने अपने जिनके जिनके हमने दुख दिए हुए हैं, वो आकर के अपने दुख बराबर कर रहे हैं। तो रोजाना ये दिख रही है फिल्म, भाई क्यों क्यों दुख दिया? क्योंकि मैंने कभी इसको दिया होगा, और जितना इसको दिया था उतना ये देगा, जरा सी भी कसर नहीं छोड़ेगा। माफी नाम की चीज है ही नहीं, کو پتا لگ گیا نا, دیکھ گیا نا کہ میں نے اس کو دیا تھا اس لیے اس نے آج دیا, اس نے سکھ دیا میں نے دیا تھا اس نے میرے کو سکھ دے دیا. کیوں پچھتاوا تو کرنے کا ٹائم جو ہے وہ یہی ہے, ابھی پچھتا رہے ہیں جو روزانہ سوچتے ہیں کاش میں کر لیتا اور کر لیتا, اس ٹائم میں نے آلس میں گما دیا, الویلا بیٹھا رہا, نہیں بیٹھا رہتا تو ہو جاتا کام, ہے نا, کام کر لیتا. تو روزانہ اس پرکار سے ہوتا رہتا ہے نا, ہے نا, مطلب پشچاتاپ بھی روزانہ چلتا رہتا ہے, اس ٹائم کوئی پشچاتاپ چلنے کی بات نہیں ہے. یہ لاسٹ سمے ہی چل رہا ہے, سب کو پتا لگ رہا ہے, اس ایک سیکنڈ میں کیا دیکھیں گے کیا کریں گے. ہاں مطلب ابھی کر سکتے ہیں نا, ابھی جو پشچاتاپ ہے رونا ہے تو ابھی رو رہے ہیں, پھر چاروں طرف کوئی بھی ہاں ہاں بالکل بالکل, مطلب سارا کچھ مطلب ابھی ہو ہی رہا ہے نا, کوئی ڈر ڈر کے جی رہا ہے, کوئی تانا شاہی کر کے جی رہا ہے. بھائی یہ لگ رہا ہے نا, وہاں کئی جنوں ابھی تو لگ رہا ہے, روزانہ ہر سیکنڈ لگ رہا ہے. جن کے جیون میں دکھ آ رہے ہیں وہ دکھی ہو رہے ہیں کہ کس جنم میں میں نے ایسا کرم کیا تھا جو یہ مجھے سزا مل رہی ہے, کیونکہ نانک دکھیا سب سنسار سب دکھی ہیں, پر تو کس کو کس پرکار کا, کسی کو کس پرکار کا, کس کو تن کا روگ ہے, کسی کو دھن کا روگ ہے, کسی کو من کا روگ ہے, کسی کو پریوار کا روگ ہے, کسی کو سماج کا روگ ہے, کس کو راجنیتک روگ ہے. روگ تو دنیا بھر کے لگ رہے ہیں نا, مطلب وہ اسی بزنس کا گھاٹا ہو گیا, بزنس میں یہ ہو گیا, مطلب کھیتی بگڑ گئی, جو بگڑ گیا, مطلب کہنے کا ہے کہ ہر ایک کو اپنے اپنے پرکار کا دکھ اپنے پرکار کا سب کو مل رہا ہے, سب کو اپنے اپنے حساب کا دکھ مل رہا ہے, سکھ بھی مل رہا ہے, وہ اپنے کرموں کا حساب کتاب برابر کر رہا. تو جج کی کرسی پر بیٹھ کر کرو چاہے اپنی من مرضی کی کرسی پر بیٹھ کر کرو. بھل تمو میں آتے ہیں, ستو رجو تمو میں آتے ہیں تو بھی پہلے آنے سے دکھ نہیں بھوگتے. مان لو کوئی آتما آئی ہی کلیوگ میں ہے, وہ تو آتے ہی اس کو دکھ نہیں ملے گا, چاہے کلیوگ میں لاسٹ میں آئے, پہلی پہلی بار جب بھی کوئی آتما آئے گی آتے ہی اسے دکھ نہیں ملے گا. ہاں باپ کہتے ہیں کہ سد گتی داتا پتت پاون میں ایک ہی, پہلے پہلے جو آتمائیں آتی ہیں وہ سکھ بھوگتی ہیں پھر دکھ بھوگتی ہیں. تم بھی نمبر وار پرشارتھ انوسار پہلے ستو پردھان پھر ستو رجو تمو میں آتے. تو جتنا سمے کے لیے جو آتما آئی ہے اس کو چار حصوں میں بانٹ دو. سیدھا حساب ہے کہ کوئی آتما پانچ ہزار سال کے لیے آئی ہے تو اس کو ساڑھے بارہ سو ساڑھے بارہ سو ساڑھے بارہ سو سال کے چاروں تیز ہو جائیں گی, اور جو آتما آئی ہے صرف ایک ہزار سال کے لیے تو اس کے ڈھائی سو ڈھائی سو سال کی ہو جائے گی, کوئی سو سال کے لیے آئی ہے تو اس کے پچیس پچیس سال ہو, پچیس پچیس مہینے ہو جائیں گے. ایک سال کے لیے آتما آئی ہے اس کے پچیس مہینے ستو پردان, پچیس مہینے ستو, پچیس مہینے رجو, پچیس مہینے. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی ستو پردان اوستھا ویسی ستو پردان نہیں ہوگی جو ستیگ میں آنے والوں کی ہوگی, ان کی اب کے حساب سے ستو پردان ہوگی, اور اب کے حساب سے وہ اس اوستھا سے تمو پردان میں جائے گی. سب کو نہیں ملتی, ہر پرکار کے بچے ہیں, جو بچے سڑک پر پیدا ہو رہے ہیں ان کو کیا مل رہا ہے, جھوپڑیوں میں پڑے ہیں جی, ہاں نہ ماں ملے نہ باپ, کہاں سے ملے گی, دونوں پیچھے کمان پہ لگ رہے ہیں. اب یہ پانچ بجے کھڑے ہو جاتے ہیں لائن میں, یہ کیا ہے, یہ دونوں نوکری پہ جا رہے ہیں, پانچ بجے وہ ہاسٹل سے آئے گی تو پھر اس کو سنبھالو اور اس کو بھیجو. یہ سارے کیا ہیں؟ یا تو پیسے کما لو, ادھر پیسے کماؤ ادھر پیسے دے دو, بس سنبھال لو یا کیسے بھی کر لو. پھر دیکھو بچوں کو پالنا یہ محنت تو ہے ہی, تم بھی نمبر وار سدگتی کو پاتے ہو مکھ آٹھ دانے گنے جاتے. مکھ کیا ہے؟ جو آٹھ دانے ہیں جو ایک دم پیور پوتر جاتے ہیں, جن کو ذرا بھی کوئی سزا نہیں. اب تم سب دروپدیا ہو, اب تم سب کون ہو؟ دروپدیا ہو. باپ کے بنے ہو تو باپ کو کبھی چھوڑنا نہیں. اب باپ کے بنے ہو تو باپ کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے, پرنتو شری مت پر یاد نہیں کرتے ہیں تو پھر مایا ہاتھ چھڑا دیتی. گود تو لی شروع میں چلتے آئے اچھے اچھے بڑے میٹھے بچے, جن کو وجے مالا میں تیسرا چوتھا نمبر میں رکھتے تھے. پہلا دوسرا نہیں, کیوں؟ فکس ہے, پہلے دن سے فکس ہے. بس جو تیسرے چوتھے نمبر پر رکھتے تھے وہ بھی اشریوت بھگنتی ہو گئے. یہ بھی اس سنگم یوگ کی رسم رواج ہے. اشریوت سننتی کتنتی بھگنتی, اور آج چوتھا شبد ہے مرن. ٹھیک ہے, یہ ہوتا رہے گا, یہ ہوتا رہے گا. کہیں گے ڈراما میں ان کا یہ موت بھی باپ کا بن کر پھر ہاتھ چھوڑا تو گویا مر گیا. روزانہ مرتے ہیں پھر آ جاتے ہیں. چھوڑ دیا مرلی سننا, چھوڑ دیا دوسروں کے ساتھ چلنے لگ گئے, پھر چلو آ جاؤ واپس بابا کے پاس. اس ٹائم تو مر گئے نا, پھر آ گئے, پھر مر گئے, پھر آ گئے, چل ہی رہا ہے. کتنے بھائی بہن آرام سے سو رہے ہیں گھر جا کر. بابا تو اتنے میں مار دیتا ہے, اچھا تو نے پتی کا کہنا مانا جا مر گئے, بیٹے کا کہنا مانا مر گئے, کسی دوسرے کا کہنا مانا مر گیا. یہ مار دیتا ہے, ترنت مار دیتا ہے. پھر آ جاؤ تو کہتا ہے آ جاؤ بیٹھا ہوں, میں تو بیٹھا ہوں, آ جاؤ آ جاؤ. تو بھل اس دنیا میں پرنتو جیتے جی یہاں سے نکل کر آخری دنیا میں چلا. کوئی کارن تو بنتا ہے نا. بھل کہیں گے ڈراما, ڈراما کہہ دیں گے, پرنتو شری مت پر نہ چلنے سے مایا سے ہار کھا لیتے. پھر تقدیر پر بھی لکیر لگ جاتی ہے. ایشور کا بننے سے پھر ہوتی ہے مایا سے لڑائی. ایشور کا بنیں گے تو کیا شروع ہو جائے گی؟ مایا سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. باقی دیوتاؤں اور اسروں کی لڑائی نہیں. بابا کتنے دن سے کہہ رہے ہیں, دو دن ہو گئے نا, کوروں اور پانڈوؤں کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہے. کوروں اور پانڈوؤں کی لڑائی نہیں. کس کی لڑائی ہوتی ہے پھر؟ دیوی گنوں اور آسری گنوں کی جد ہمارے اندر. جب ہم اپنے میں دیوی سنسکار دیوی گن دھارن کرنے کا پریاس کرتے ہیں تو آسری گن نکلتے. مایا اسر ہے جو جیت پا لیتی ہے. مایا اسر ہے, وہ ہم پر کیا کرتی ہے؟ جیت پا لیتی ہے. اچھا اب بچے لکھتے ہیں کہ راکھی بندھن کے تہوار پر کیا کریں, کیا کریں راکھی بندھن کے تہوار پر؟ بچے لکھتے ہیں بابا کو, ہر تہوار پر تیاریاں تو کرتے ہو نا, رکشا بندھن پرو کے اپلکش میں ان ایڈوانس جا کر راکھی باندھتے ہو, इसका पूरा रहस्य भी बुद्धि में होना चाहिए। आगे तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां क्या करते थे, राखी बांधते थे, घरों में जाके ब्राह्मण राखी बांध के आते थे। अब ये रिवाज निकला कि बहन भाई को राखी बांधती, पहले ब्राह्मण बांधते थे, बहने राखी नहीं बांधते। घर के सबको बांधते थे और भी सामान को भी बांध देते थे, छाज को भी बांध दो, चरखे को भी बांध दो, इसको भी बांध दो। हाँ, हमारा काम था ये बांधने का ना, ढेर सारे कई महीने पहले, 2 महीने 3 महीने पहले बांधना बनाना शुरू कर देते थे, दागी लेके कपास बांधना, फिर जाके नहीं, मतलब ब्राह्मण तो आएगा ना देने के लिए, वो तो बना के लाएगा ना, वो तो बना के लाएगा ना, मतलब वो तो देखे जाएगा, फिर चाहे आप जिसको मर्जी करो, वो तो वो घर के जितने मेंबर हैं या जितने भी हैं वो सबके लिए देख। असल में ब्राह्मण राखी बांधते क्यों, क्योंकि ब्राह्मण जाति ऊंच स्वच्छ गाई हुई, स्वच्छ गाई हुई है। ब्राह्मण असल सन्यासियों से भी ऊंचा, परंतु ब्राह्मण अनुसार इस समय सन्यासी ऊंच बन गए। आगे ब्राह्मण राखी बांधते थे, फिर जन्म अष्टमी पर राखी खोलते, वापिस आकर के 8 दिन बाद फिर राखी खोलते भी थे, बांधने के भी पीछे लोग, खोलने के भी पीछे, कमाई होती थी हमारी, उसका कारण बता रहे हैं ना। जैसे द्रौपदी के लिए कहते हैं कि जटाएं खोल दी, कब खोलेगी जटाएं, जटाएं क्यों खोली थी उसने, हां जी, हाँ, दुर्योधन चोटी से पकड़कर घसीट के लाया था तो उसने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं इसके क्या वो खून से अपने बाल नहीं धोऊंगी तब तक मैं चोटी नहीं लगाऊंगी, जटाएं नहीं बांधूंगी। फिर वो खून से धोई, फिर जटाएं। ऋषि लोग भी जटाएं भी हमेशा खुली रहती हैं, पतिव्रता स्त्री होती है तो चोटी बांधती है। द्रौपदी ने खोल दिया था कि जब तक हम अपना राज्य नहीं लेंगे तब तक चोटी नहीं करेंगे। अब तुम बच्चों को सिर्फ अर्थ समझाया जाता है, जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक सुख से सोएंगे नहीं, यानी हमने भी जटाएं खोल दी, ठीक है, अब हम सोएंगे नहीं, हमारी जटाएं है ही नहीं, हमारी खुली खुलाई है। गाते हैं ना, आराम हराम है, अंदर में ये जोश रहता है कि जब तक स्वराज्य नहीं लिया है तब तक सुख कहां, सुख तो भविष्य में पाना है, इसके लिए पुरुषार्थ अब करना है। अब तुम जानते हो रक्षा बंधन अर्थात पवित्र रहने के लिए हम प्रतिज्ञा करते, और जब हम संपूर्ण पवित्र बनते हैं तो क्या बनते हैं हम, उससे पहले, हाँ, अभी परसों पहले दिन तो आया था, बाबा को पता है मैंने वो क्या क्या बता रखा है ना, कृष्ण का मतलब कृष्ण बनने का मतलब उससे पहले विष्णु चतुर्भुज, पहले हम बनेंगे विष्णु चतुर्भुज, तब कृष्ण के साथ जन्म लेंगे। जब जन्म ले लिया फिर राखी बांधने की जरूरत है? जब कृष्ण बन गए भाई, पवित्रता की राखी बांधी किस लिए थी? कृष्ण बनने के लिए। और जब हम कृष्ण बन गए, जन्माष्टमी पर कृष्ण का जन्म हो गया, फिर क्यों राखी बांध के रखें? खोलो इसको, काम पूरा हो गया। समझ गए बात को? कैसे ढूंढ के लाता है बाबा एक एक बात को समझाने के लिए। राखी अर्थात प्रतिज्ञा की बात है ना, जब काम पूरा हो गया तो प्रतिज्ञा खत्म। ऐसे ही जब कोई गुरुकुल में जाते थे तो उनको भी मतलब जनेऊ धारण कराया जाता था और उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती थी कि जब तक हम गुरुकुल में रहेंगे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अब जब ब्रह्मचर्य से यदि वहां समर्पित होता है तो उसको तोड़ने खोलने की जरूरत नहीं है, परंतु यदि वो कहता है कि अब मैं गृहस्थ धर्म में जाना चाहता हूँ तो फिर उसकी प्रतिज्ञा खोली जाती थी कि गुरु फिर उनको प्रतिज्ञा खुलाता था, आज से तुम्हें गृहस्थ जीवन में जाने के लिए छुट्टी दी जाती है, आज से वो प्रतिज्ञा तुम्हारा, प्रतिज्ञा से तुम क्या हुए? मुक्त हुए। अच्छा है, प्रतिज्ञा जनेऊ बांधना मतलब डालना मतलब प्रतिज्ञा करना, पर तो अब ना तो वो जानते हैं कि प्रतिज्ञा क्या करनी होती है, क्या कैसे होता है, वो तो एक रिवाज सा बना रखा है और डाल देते हैं, डाल रखा है, वो भी कभी डाल जब जरूरत पड़ी तो डाल लिया, नहीं तो उसे भी उतार के रख दिया, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है, मतलब वो तो जानते नहीं। आज ये कोई भी जो कर्म करने वाले पंडित हैं इनको भी वो अच्छी तरह नहीं जानते। शादी होती है, शादी से पहले जनेऊ डालते हैं, जनेऊ डालते हैं ना, किस लिए जनेऊ डालते हैं? सिर्फ उसको विधि पूर्वक को देखते नहीं और पंडित करते भी नहीं पूरी तरह से। नहीं, लड़कियों को तो जनेऊ नहीं डालते। हाँ वो अलग है, मतलब जनेऊ शादी से पहले डालते थे ब्राह्मण, चाहे वो महीना पहले, 15 दिन पहले, 6 महीने पहले, है नहीं, जनेऊ डालते हैं और फिर वो जो है ना उसके बाद जनेऊ डालने पर प्रतिज्ञा कराते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो एक जब हमारे भांजे का जो है ना विवाह होना था तो उसके ऊपर वो पंडित जी आके बैठ गया, उसने कहा जी प्रतिज्ञा करो, जनेऊ डाल रहा हूँ कि मैं जो है ना पवित्र ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। बोला पंडित जी क्या कर रहे हो, क्यों मेरी शादी होनी है? कहता है भाई तू पहले कर तो सही प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा करा ली पीछे ले लिए। बोला एक तो तेरे प्रतिज्ञा से मुक्त करना है, निकाल पीछे जे हाथ में रख, अब तेरे को प्रतिज्ञा से मुक्त करता हूँ, नहीं तो बंधा रहे। सर भाई जो पैसे लेने ले ले, तो मेरे को प्रतिज्ञा से मुक्त कर। मतलब कहने का मतलब यह है कि वो उस रिवाज को जो था वो भूल गए, उनको ना बताते ना करते, मतलब ये बात है। तो हर चीज का अपना नियम था। अब ये त्यौहार कब से शुरू हुआ, राखी बांधने का त्यौहार कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कौन निकला जिसने राखी बांधने की राय निकाली, किसने निकाली? कोई एक राय निकालते हैं फिर उसका नाम बाला हो जाता है, तो ये पवित्रता की निशानी है। बहन तो ही कुमारी, कुमारियां बांधती हैं, तुम गृहस्थी को भी जाकर बांधती हो, तुम कुमारियां हो, ब्रह्मा कुमारियां है नहीं, तुम जाकर गृहस्थी को भी बांधती हो। कुमार तो है ही कुमार, बहन भाई को बांधती है, कुमार हो वह शादी किया हुआ हो, शादी किया हुआ फिर पवित्र रहे, ये तो बड़ा मुश्किल है। जब उसने शादी कर रही है आप उसको राखी बांध रहे हो, उसको कहो कि तू पवित्र रहे, ये तो बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं कि ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो भी नहीं बनते हैं, तो बहन द्वारा कुमार भाई को राखी बांधनी चाहिए कि प्रतिज्ञा करो कि हम कभी विष नहीं पिएंगे। जो है ही विकारी वे तो कभी विकार को छोड़ेंगे नहीं, फिर क्या उनसे प्रतिज्ञा करानी? भगवान का फरमान भी नहीं मानते, भगवान आकर कह रहे हैं उसका फरमान भी नहीं मानते, तो ये कुमार कुमारियों की रस्म चली आती है। तो अब तुम समझते हो कि ये त्योहार भी संगम युग का, क्योंकि इस समय परमात्मा आकर आप कुमारियों द्वारा या आप ब्राह्मणों द्वारा, ब्राह्मण कहो कुमारी, ब्रह्मा कुमारी कहो, सबको क्या बांधते हैं, राखी बांधते हैं पवित्र। सतयुग में तो राखी बांधने की दरकार ही नहीं है, सतयुग में तो है ही पवित्र, तो वहां किसी को राखी बांधने की जरूरत, ऐसे नहीं कि ये सतयुग से लेकर रिवाज चला आया है। उत्सव बहुत करके संगम युग के हैं, लक्ष्मी नारायण का उत्सव भी अभी मनाते हैं, परंतु उनका महत्व, श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, परंतु पहले तो श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया उसका पता ही नहीं, जन्म कैसे हो गया वे बताओ, विचारों को मालूम ही नहीं। ये भी क्लियर कर लिखना है, उत्सव सब हैं इस संगम युग के, सतयुग में ऐसी बात होती नहीं, ये तो द्वापर में कुछ समय बाद फिर शुरू होते हैं। दीपमाला का उत्सव भी सतयुग में नहीं मनाया जाता, सतयुग में कोई दिवाली पटाखे चलाना ऐसा नहीं। संगम के हैं परंतु द्वापर से बनाए जाते, दीपमाला का उत्सव भी सतयुग में नहीं मनाया जाता, जैसे यहाँ मनाते हैं। यहाँ मनाने का अर्थ दूसरा है, उत्सव का महत्व कब का है ये समझने की बात, उत्सव कब मनाया जाता है। उत्सव का मतलब होता है उत्साह, है ना, खुशी हो, उमंग उत्साह बढ़े, है ना। बच्चों को समझाया जाता है ये उत्सव इस समय के हैं, जबकि शिव जयंती होती है। जब क्या होता है, शिव जयंती, शिव बाबा आते हैं, आकर के सब को उमंग उत्साह से भरते हैं। तुम आत्मा हो, तुम अमर हो, तुम परम धाम से आई हो, तुमको वापिस परम धाम चलना है, ऐसे सारा ज्ञान देकर उमंग उत्साह खुशी से भर देते हैं। शिव जयंती के बाद क्या आती है, उससे पहले क्या आता है, शिव जयंती, गीता जयंती तो एक ही होती है। शिव पैदा हुआ तो गीता ज्ञान शुरू कर दिया उसने, पैदा होते ही कहा तुम आत्मा हो। होली भी आती है, और क्या आता है, एक बार आती है होली और एक बार आती है राखी, दो बड़ी शिवरात्रि है ना, एक बार होली के बाद शिवरात्रि के बाद आती है नहीं? तो होली आती है और एक पर आती है राखी, और जब राखी आती है तो उसके बाद जन्माष्टमी आती है, और होली आती है तो उसके बाद क्या आता है, रामनवमी, उसके बाद रामनवमी आती है, ये अष्टमी आती है, वो नवमी आती है। शिव जयंती के बाद फिर होती है राखी, पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं, होली माना भी पवित्र बनना, कि यह अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे, भारत को या विश्व को पवित्र बनाने के लिए तुम बच्चों के लिए इस रक्षा बंधन का बड़ा महत्व है। प्रतिज्ञा की जाती है हम कभी पतित नहीं बनेंगे, आज तुम पावन बनते हो तो सिर्फ तुम पावन कुमारियों को ही हक, तुम पवित्र कुमारियों को हक है सबको प्रतिज्ञा कराने का। राखी बांधने का, भाइयों का को सदैव पवित्र रहने के लिए राखी बांधनी है, और इन गृहस्थियों से प्रतिज्ञा करानी है, गृहस्थियों से भी क्या करानी है, पवित्र रहने की। कहते हैं ना पतित पावन आओ, तो जो गायन है वो ही प्रतिज्ञा कराते हैं, प्रतिज्ञा से पावन बनो। बाप आकर प्रतिज्ञा कराते हैं। शिव जयंती के बाद है रक्षाबंधन, होली के बाद है, होली भी ज्ञान की है, उसे कहते हैं धुरिया और होली। एक धुरिया होती है और एक होली। पहले कौन सा था? दोनों इसी समय के हैं। होली अर्थात पवित्र बनो, धुरिया माना ज्ञान धारण करो, ज्ञान धारण करो। वह फिर पत्थर ठिककर गोबर आदि आदि बनाकर क्या क्या करते, तो पतित पावन बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। जो जीते जी मरते हैं उनमें भी मातेले और सोतेले होते हैं। जो जीते जी मरते हैं ना, उसमें भी दो प्रकार के बच्चे हैं, मातेले भी और सोतेले। मातेले का हिसाब किताब जरूर बाप के पास होगा। बाप जरूर बच्चों के बच्चे की सब कारोबार मिल्कियत आदि को जानते होंगे। मातेले वे जिनका बाप से पूरा पूरा लव रहता है, मातेले भी नंबरवार होते हैं, सब पे एक जैसे। सोतेले भी नंबरवार हैं, कोई कपूत तो कोई सपूत तो होते ही है ना। शिव जयंती भी संगम युग पर होती है, संगम को भी टाइम चाहिए ना लगातार। जैसे लीप मास कहते हैं ना, फिर लीप सेंचुरी होती है 100 वर्ष की। ये बहुत ऊंची है लीप सदी, ये बहुत ऊंची है लीप सदी। 20वीं सदी कहते हैं ना, इनमें भी ये सदी जिसमें बाप आते हैं, इसको संगम सेंचुरी कहेंगे। उथल पुथल होने में टाइम लगता है। दीपमाला भी यहाँ की है। तुम बच्चे जानते हो शिव जयंती के बाद फिर है पवित्रता की बात, फिर है पवित्रता की बात। शुरू से लेकर पवित्रता पर झगड़ा चला आया, शुरू से लेकर पवित्रता पर झगड़ा चला आया है। पवित्रता के साथ ज्ञान और योग की होली धुरिया साथ साथ है, होली भी और दुरिया भी साथ साथ। ठीक है, बाप की याद भी अच्छी रीति चाहिए, ज्ञान की दुरिया भी चलता रहता है। ज्ञान बरसात तुम पर होती ही रहेगी, होती रहेगी। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। सब कहते हैं ये कौन आया, जो कहते हैं घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहकर दिखाओ, कौन है ये? सन्यासी तो खुद घर बार छोड़कर जाते हैं। गोपीचंद राजा की भी कहानी है, उनसे पूछा गया तुमने राज्य भाग्य क्यों छोड़ा, बोला प्रभु मिलन के लिए छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? प्रभु मिलन के लिए छोड़ा है। इस पर गीत भी अच्छे अच्छे गाते हैं। यहां तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है, रहना गृह व्यवहार में, परंतु रहना कैसे है? पवित्र, पवित्रता पर ही सारी हिट हिट होती है। अब रक्षा बंधन है, पवित्र बनने बनाने का यादगार पूर्व सॉरी पवित्र बनने का यादगार पर्व, ये रक्षा बंधन है। कौन सा पर्व? रक्षा बंधन का पर्व। जहां देखो छोटे छोटे बच्चों को भी साक्षात्कार होता है। आज छोटे बच्चे ने क्या भक्ति की है? बाबा ने झट सबको साक्षात्कार करा दिया, तो समझते थे जादू है। इसको कहा जाता है शिव बाबा का तो समझते थे जादू है इसको कहा जाता है शिव बाबा के चरित्र। बैठे बैठे गुम हो जाते थे, बाबा के पास आते थे और आकर क्या हो जाता था? बैठे बैठे ध्यान में। ये सब चरित्र परम पिता परम आत्मा के हैं। श्री कृष्णपुरी के पुरी ने श्री कृष्ण के ये चरित्र किसके हैं? परम पिता परमात्मा के, श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण का नाम ले सारी बदनामी की। भागवत में क्या क्या लिख दिया है, श्री कृष्ण सतयुग का राजकुमार। उसने चीर हारे मक्खन चुराया, ये काम शिव बाबा के तो नहीं। ऐसे चरित्र तो गाए नहीं जाते, ऐसे चरित्र तो गाए नहीं जाते। दुनिया वाले समझते हैं बरोबर श्री कृष्ण ने ये भी ये सब किया होगा। तो फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर में आत्मा आ गई आई होगी, जिसने ज्ञान सुनाया होगा, परंतु ऐसे तो नहीं। परंतु ऐसे तो नहीं हो सकता। वे तो प्रिंस नामी ग्रामी था, श्री कृष्ण तो क्या था? नामी ग्रामी प्रिंस था। फिर रथ दिखाते हैं, रथ में श्री कृष्ण दिखाते हैं, घोड़े गाड़ी पर बैठा है, बैठ पाठशाला चलाई जाती है क्या? घोड़े गाड़ी के में बैठ कर के ज्ञान सुनाया जाता है क्या? हाँ, ये है युद्ध का मैदान, जहाँ आप भी युद्ध कर रहे हो। किसके साथ? अपने विकारों के साथ। यह है राजयोग की पाठशाला, जहां उन्होंने युद्ध का मैदान दिखा दिया। कहा उन्होंने क्या किया? युद्ध का मैदान दिखा दिया। और कहा तुम्हारी ये युद्ध? ये है माया पर जीत पाने की युद्ध। तो तुम बच्चों को रक्षा बंधन पर समझाना है। क्या समझाना है? रक्षा बंधन अर्थात पतितों को पावन बनाने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा आए हैं। तुम ब्रह्मा कुमारियां हो जो गाई हुई हो, तुम्हारी वे जो 21 कुलों का उद्धार करे। अच्छा, फिर ये उत्सव सतयुग आदि में नहीं चलता। जो सतयुग ये उत्सव जो है ये सतयुग आदि में नहीं चलता, आदि में नहीं चलता। राखी बंधन के बाद फिर श्री कृष्ण जयंती आती है, क्योंकि सतयुग में पहला नंबर जन्म श्री कृष्ण पहला नंबर जन्म है श्री कृष्ण का, उनकी भी राजधानी है, वे इस समय प्रतिज्ञा करते हैं श्री कृष्ण के कुल में जाने के लिए। ये राजयोग है, तुम नर से नारायण बनते हो, लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी है नहीं। कृष्ण का जन्मदिन मनाते, लक्ष्मी नारायण का जन्मदिन उनकी कोई जीवन कहानी भी नहीं। तो देखो हमारे चित्रों में भी यही दिखाया है ना, राधा कृष्ण को दिखाया है ना, वहां देखो सतयुग में, सतयुग में नीचे झाड़ के चित्र में, सृष्टि चक्र के चित्र में है नहीं, इसमें भी राधा कृष्ण को ही दिखाया है। बिल्कुल सच तो बाबा ही बता सकता था ना। करते हैं जिनको नारायण की करते हैं, राम की करते हैं, हर एक अपने अपने जो जिसको समझ रखा उसे करते हैं। कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। जीवन कहानी है नहीं, लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी तो कोई है ही नहीं। मतलब बाप ने समझाया है राधे कृष्ण सो लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी। श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन अच्छा, नारायण जयंती कहाँ है, कारण होगा ना, कोई कारण तो होगा ना। कारण तो होगा ना कोई ना कोई, नारायण जयंती कारण होगा ना। ना समझने के कारण सारा खेल मुझा दिया, जैसे सूत मुझ जाता है ना, ऐसे ही ज्ञान की बातों को भी मुझा दिया। महत्व तो सारा यहाँ का है, ऐसे भी मत समझो कि दीपमाला कोई सतयुग से शुरू होती है, सतयुग में तो है ही पवित्र दुनिया, सभी की आत्माएं जगी हुई हैं, उत्सव सब इस समय के हैं। अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो, शिव बाबा स्वयं आकर के बच्चों को कहते हैं अब पवित्र बनो, अब पवित्र बनो, तुम आत्माएं मैली हो गई हो। सन्यासी तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा पर कोई लेपक्षेप नहीं होता, इसलिए बहुत लोग कह देते हैं अंडा मछली आदि खाने में कोई हर्जा नहीं, सबकी अपनी अपनी रस्म रिवाज है ना। आगे काली पर मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, शिव को तो काला नहीं कहेंगे, ना शंकर को कहेंगे, हाँ ब्रह्मा और सरस्वती। शंकर को उनको कहेंगे, हाँ ब्रह्मा और विष्णु के दो रूप गोरे से काले बनते, ये सब बात बैठ समझाते। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, बाप से पूरा पूरा लव रख मातेला बनना है, अपना पूरा समाचार बाप को देना है, कभी भी कपूत नहीं बनना है। रक्षाबंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में रख, पवित्र जरूर बनना है, माया से कभी जरूर होगी कभी माया से कभी हार जरूर होगी, हार खानी पड़ेगी। हार निश्चित रूप से खाएंगे तो पवित्रता कम हो जाएगी, पवित्रता के बल स्वरूप फिर हम राज्य की प्रक्रिया लेंगे, कैसे राज्य बनाना है, कैसे गवर्नमेंट बनेगी, कैसे काम चलेगा। पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है, वरदान है। सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्त्वम के वरदानी बाप समान हो। जैसे बाप दादा आप मालिकों को की आज्ञा को मानकर मिलन मनाने के लिए परम धाम से आते हैं, जी हजूर का पाठ पक्का करते हैं, पढ़कर हाजिर हो जाते हैं, ऐसे तत्त्वम तत्त्वम अमृत वेले से लेकर दिन के समाप्ति तक धर्म और कर्म में बाप समान बने तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे, मिलन के मेले में। इस मिलन के झूले में रहने से प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाले बन जाएंगे। सर्व खजाने आपके इस श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। सदा बाप ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहेंगे तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। अच्छा, शांति और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें।